राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 मई 1993 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में संपन्न हुआ। राम।
पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण।
हमारे गांव जो है जिसमें हम गांव में रहते हैं वहाँ संघ दोष का आपने बड़ा बुरा असर बताया और वहाँ लोग शराब पीते हैं। जिस गांव में हम रहते हैं वहाँ शराब पीते हैं, शराब निकालते हैं। सभी ब्राह्मण भी शराब पीते हैं, हमने खुद देखा है। और वे शराब पीकर दूसरों के घरों में जबरन आते हैं। ऐसे गांव का संघ छोड़ दें, क्या करें?
संघ छोड़ना बढ़िया है भाई बंधु, मैं तो कहता संघ छोड़ दें। उनका घर है, जमीन है, जायदाद है, परिचित है, पड़ोसी है, उनको छोड़ कर और जावे, उनमें कितनी आफत है। मेरे तो कह दिया वहां छोड़ने, आफत देनी चाहिए, कितनी आफत छोड़ने। हम कह रहे उनको संग नहीं करना चाहिए। बचो, आप बचो, किसी तरह से आप बचो, आपके कुंड कुटुंब को बचाओ, आपके बालकों को बचाओ। शराब पीना बहुत ही खराब है, लाश एक तो जुआ एक शराब, ये बहुत त्रास करता है। जमीन का, जायदाद का, पैसों का नाश करता है, शरीर को बहुत नष्ट करता है, आंतों को खराब कर देता है, रोगी की दवाई नहीं लगती उसकी, इतना खराब होता है। और ये कर्जों की ये चीज जो बहुत फैल गई है, तो ये अपने दृष्टि निषेध करो। अब गांव भर में ऐसा हो जाए तो हम क्या करें बताओ? आप बचो, अपने कुटुंब को बचाओ, किसी तरह से बचाओ जैसे ही। और दूसरी जगह जाओ तो और जगह जाकर के और अपने बच्चे हैं उनको और जगह भेजे, काम करो वहां पर। और दूसरे काम जचिया कहीं तो फिर उन घर बार बेच करके फिर छोड़ो। जल्दी छोड़ने की बात नहीं है, दूसरी जाओ भी कहाँ, जहाँ जावे वहाँ वास्तव में सब जगह लाए लगी है। ये शराब वाली लत बहुत जोर से लग रही है, जगह जगह ऐसी बात हो रही है। कहाँ जाओगे, छिपोगे कहाँ? ऐसी विशेष बात हो रही है, इस वास्ते उनका संग छोड़ो। ये शराब पीना और ब्रह्म हत्या करना, गुरु पत्नी गमन और सोना और नर्तनों की चोरी करना, ये चार महापातक है। चार ये महापातक है, महापातक। एक संत ने कहा था कि आप मरी हुई गाय का मांस हिंदू खा ले तो इतना दोष नहीं है जितना मरिया का है। महान पुरुष
तो शराब
पीने का महापाप है क्या?
हाँ जी, महापाप, महान महापाप, बड़ा भारी। इनसे बड़ा भारी नुकसान होता है, उसकी तरफ लोगों की दृष्टि नहीं है। वो नुकसान ये होता है कि जो ये पाप करते हैं ना, उनके हृदय में जो धार्मिक संस्कार है, पारमार्थिक परमात्म विषय जो भीतर में संस्कार है, अंकुर है, उन अंकुरों को जला देता है। दूसरे पाप होते हैं मांस मज्जा मांस आदि भक्षण, वो पाप लगता है, पाप तो दंड से दूर हो जाता है, परंतु अंकुर ही डर गया धर्म का तो उगेगा ही नहीं। बीज भूज दिया जाए बीज तो क्या उगेगा। इस तरह से धार्मिक भावों का नाश करता है। एक सज्जन हमें मिले थे, वो कहते थे बड़े धार्मिक अच्छी मेरी दृष्टि से मैं कुछ उनको अच्छा मानता हूँ, अब उनका सही नहीं है। उन्होंने कहा था कि मदिरा से नुकसान होता है, ऐसे ही व्यभिचार से नुकसान होता है। जो पुरुष व्यभिचार करता है उसके भी धार्मिक भावनाओं का नाश होता है, स्त्री व्यभिचार करती है उसे धार्मिक भावों का नाश होता है। उन्होंने यहां तक कहा कि मेरे ऐसे काम पड़ गया है जिससे धार्मिक भावना पीछे जागृत होनी मुश्किल हो गई, ऐसे ऐसे पाप है। 3 वर्ष तक उनका संग कर रहे, मजा न पिए तो अभी दंड वही होता जो मजा पीने वाला होता है। परंतु जो स्त्री है उसका पति ऐसा है, ऊपर बचारी बहुत कहती है नहीं मानते हैं, तो पत्नी क्या करे, उनको ये दोष नहीं था, भगवान के नाम का जप करे, कीर्तन करे, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, पति को मना करे, नहीं माने तो भाई तुम्हारा वो दोष नहीं होगा, क्योंकि तुम तो वहाँ हो अब करेगा, वो संग दोष है जो उनका कुसंग करते उनका है। तुम जाओगी कहाँ, माँ बाप ने जिसको दे दिया उसकी तुम धनपत्नी बन गई, उनके घर के मालिक आप बन गई, तो आपके लिए ये इतना दोष नहीं लगता, ऐसा अनुमान होता है।
क्रोध तो आता जाता है, उसके रहने का थोड़ा समय रहता है, परंतु लोभ हरदम रहती है। लोभ न आने, लोभ में न आने के लिए क्या करना चाहिए?
लोभ के विषय में क्या करना चाहिए, तो भाई एक तो बात भगवान का शरण लो, दूसरा रोजाना कुछ न कुछ दान करना चाहिए, रोजानित्य हमेश। अब वो शक्ति के अनुसार है, थोड़ा हो तो 5-4 आना, 4 आना, 10 आना इतना रोजाना अन्नदान दे दो, कुछ जल दान दे दो, कुछ कहीं पैसा भी दे दो, पैसा को सोच समझ देना, हरेक जगह नहीं देना है, जिसमें हरेक को पैसा देना बड़ा खराब है। ये मांगने वाले हैं, ये पैसा मांगते हैं, उनको पैसा देना मदे खरीदेंगे, मांस खरीदेंगे, वो पाप लगेगा। इस वास्ते पैसा जाते मत दो, बनाया हुआ अन्न दे दो, भुजिया भूंगड़ा हुआ दे दो, भुजिया दे दो, धानी बनाई हुई मक्की की वो दे दो, ज्वार की धानी बनाई वो दे दो, खाने की पदार्थ दे दो, जो खा ले, बनाई हुई रोटी नहीं दे दो, पर पैसा जहाँ तक बड़े मान लो उनका दुरुपयोग होता है। ये जितने मनते होते हैं बड़े गरीब दिखते हैं, पीछे मांस खाते हैं, बहुत पाप करते हैं, वो पैसा कभी मत दो। अगर आप अपना भला चाहते हो तो क्यों तो बेचारे उनको नरकों में डालो, क्यों आप नरकों में जाओ। कुपात दाना तो भवेद दरिद्र दारिद्र दोषी इन करो से पापम पाप प्रभाव नरकम प्रजाति पुनर्दरिद्र पुनर्पी। कुपात दान देने से कुपात दान भवेद दरिद्र जो हुआ, दारिद्र दोषी इन करो से पापम के पाप करता है, पाप प्रभाव नरको पाप के प्रभाव नरकों में जाते हैं, पुनर्दरिद्र पुनर्व पापी भेद पापी कैसा जाएगा। इस वास्ते पैसा आदि देना हो तो खूब सोच समझ देना, अरे जी फूल चढ़ा दो पार्वती ठाकुर जी को चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, माला चढ़ा दो, पैसा सोच समझ जहाँ सदुपयोग हो तो वहां देना, कोई दिक्कत नहीं। ब्राह्मण हो, गरीब हो, अपाहिज हो, आरक्षित हो, उनके भी अन्न से दान अनुदान से पूर्ति कर दो, कपड़े दान से कर दो, तो वो बढ़िया भाव है।
लोभ और कंजूसी में क्या अंतर है?
लोभ और कंजूसी में अंतर नहीं, एक ही है। लोभ होता है तभी कंजूसी होती है। लोभ से 3 बात होती है, एक तो अन्यायपूर्ण कमाता है, एक न्यायपूर्ण उचित जगह देता नहीं है, और एक पैसा का संचय करता है। 3 दोष आते हैं ये बड़े, और के दोष तो बहुत होता है। लोभ से अनुचित रीति से कमाया जाता है, पाप करके पैसा पैदा किया जाता है, पाप करके। तो ये एक बहन बेटी को ब्राह्मणों को गायों को दिया जाए तो उस देने में बाधा लगाता है लोभ, और अनुचित जगह खर्च होता है। पुण्य में नहीं लगाएंगे, बेटी के ब्याह में लाखों रूपये लगाएंगे, परंतु गायों के लिए अथवा जो अपाहिज आरक्षित गरीब है उनके लिए नहीं लगाएंगे। नामगिरी के लिए एक कन्या के पर 4-4 लाख और 5-5 लाख रूपये लगा देंगे, इससे भी ज्यादा 50 लाख रूपये लगाते हैं। मैं पूरा जानकार नहीं हूँ, पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, बड़ी खराब बात है। और लोभ करते हैं वो दान में पुण्य में, इनमें तो करते हैं लोग, और फालतू खर्चा बहुत करते हैं। वकीलों को जाएगा ज्यादा पैसा, वकीलों को जाएगा डॉक्टरों को जाएगा, वैद्यों को जाएगा, सदुपयोग उन पैसों का बहुत कम होगा, लोभ का नतीजा ही होगा। इस बार काम क्रोध उत्साह लोभ तस्मात देखते हैं इत्यादि की बात छोड़ना जाएगा, भगवान ने कही है गीता में, तो उसको याद रखो।
पितरों को गया साध कराने से मुक्ति होती है क्या?
हाँ जरूर होती है, साध कराने से पितरों की तृप्ति होती है। साध के दिनों में गीता पाठ करना बड़ा भारी लाभदायक है, और कीर्तन करना पितरों के लिए बड़ा लाभदायक है। भागवत पाठ, गीता पाठ, रामायण का पाठ, कीर्तन, भगवान नाम का जप, ये और शुद्ध ब्राह्मण को भोजन कराना विधि सहित, अच्छे पढ़े लिखे ब्राह्मण हो, जितने ब्राह्मण मिलते हैं उनमें पढ़े लिखे सदाचारी सद्गुणी ऐसे ब्राह्मण की परीक्षा, और जगह ब्राह्मण की परीक्षा का निषेध लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा मत लो, केवल जान मात्र से ब्राह्मण हो उसकी सेवा करो। अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मण हो, निष्णांग गुरु विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, वो सेवा गुरु विश्वास सेवा करो, परंतु श्राद्ध में ब्राह्मण की परीक्षा करो। वो आयुर्वेद का काम तो नहीं करता है, रंग का काला तो नहीं है, अंग भंग तो कोई नहीं है, आदि आदि बातें लिखी है। ऐसे ब्राह्मण को नहीं, साथ में वेद पाठी ब्राह्मण हो, तीनों को संध्या करता हो, ऐसे ब्राह्मण को साथ में अर्पण करना चाहिए। और यहाँ पर तर्पण करने का तो यहाँ गंगा जी पर बहुत ही बढ़िया है, पितरों को पानी दे रहा, पिंड दे रहा, तो पानी देना चाहिए। नदी सु बहुत हो या सु शीतला सु विशेष, बहुत जल वाली नदी हो और ठंडी नदी हो उसका जल देना, तो ठंडे पानी का बड़ा महत्व है। पितर है खाने में तो अन्न बहुत गर्म गर्म खाते हैं, भाप निकल तब तक तो भी खाते हैं, भाप निकल तो नहीं खाते भी। इस वास्ते पितरों के लिए गाय के दूध की खीर, खीर जल्दी ठंडी नहीं होती है, बहुत देर पर गर्म रहती है, तो पितरों की बहुत तृप्ति होती है उससे। लड्डू आदि को गर्म रहते ही नहीं, बढ़िया बढ़ो बढ़िया घटा नहीं, पितरों के खाने के लिए तो गर्म गर्म भाप निकलती नहीं, भाप रहे ऐसा भोग लगाते हैं, और जल ठंडे से ठंडा चाहे वो खाया कर बढ़िया करते हैं। तो तर्पण करना चाहिए, यहाँ साध करना तो वैसे करना चाहिए, और साध रोजाना करने का है। अभी बात करें तो लोग हंसेंगे, साध एक पक्ष में होता है, आया संध्या रोजाना संध्या करना, रोजाना साध करना, ये रोजाना की भी बात है, नहीं तो पूर्णिमा है अमावस्या है इन दिनों करना, और उनकी तिथिया तो करना, श्राद्ध में तिथिया वो नहीं करना, ये तो विशेषता से कर रहा है। और नहीं तो कहीं अच्छा ब्राह्मण मिल जाए उत्तम वेद पाठी, तो वो दिन कोई सा ही हो, तिथि कोई सा ही हो, श्राद्ध कर देना, ऐसा ब्राह्मण दुर्लभ होता है, ऐसे ब्राह्मण को देखकर श्राद्ध पिंड दान कर देना चाहिए। हाँ तो अंग भंग वो निश्चित नहीं करते, काले अंग का निषेध करें प्रधान क्या करे, ऐसी परीक्षा आती है। फिर से विशेष बना तो ब्राह्मणों से पूछना चाहिए, मेरा विषय नहीं है ये, मेरा विषय तो आध्यात्मिक है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, लय योग, हर योग, राजयोग ये भी है, परंतु योग विषय मेरा विचार है कुछ, तो विश्वास से करने से प्रत्यक्ष लाभ होता ही है, इसमें संदेह नहीं है। और श्राद्ध आदि का विषय मैंने पढ़ा तो है, पर तो वो याद नहीं है इतना, अपना विषय नहीं होने से उसका इतना मनन नहीं है, तो अच्छे ब्राह्मण से कराओ, गया श्राद्ध कराओ, गया श्राद्ध से पितरों का कल्याण होता है। वो कल्याण क्या है, उसकी गति हो जाती है, मानो वे रुक जाते हैं किसी प्रेत भूत पिशाच आदि दोनों में, तो उनसे अगर चलान हो जाता है, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ये नियम बनाई है, तो उनकी गति होती है, उनको मदद मिल रही है, इसमें संदेह नहीं है। ये बात
जनेऊ लेने से 12 वर्ष उम्र बढ़ती है क्या? जनेऊ लेने से उम्र 12 वर्ष बढ़ जाती है क्या?
उम्र बढ़ जाती है इसका हमें पता नहीं, परंतु पहले ये बात हुई थी शेर जी के सामने कि हमारा मुख मर गया, मर गया तो शेर जी ने कहा था कि हम कहते हैं 12 वर्ष कितना ही कहा तो याद हो तो शेर जी ने कहा ले लो इतना वर्ष तो नहीं मरेगा, 12 वर्ष तक नहीं मरेगा, कोई दिल्ली देने से मन मर जाए कोई बात होती है, माइयों के क्यों ऐसा बैंक पड़ जाता है उसे को मर गया इस बात बेटे को दिल्ली नहीं देंगे, महान अविद्या है, अज्ञान है, अंधकार है, तो ऐसा नहीं, जिन्हें वो लेना संस्कार हो जाता है, लेने जन्म संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, चूड़ा कर्म संस्कार होता है, ऐसे निज्ञोप संस्कार बड़ा उत्तम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन वर्ण वालों को जिन्हें वो जरूर लेने चाहिए, और रोज में सुबह शाम दोपहर तीन संध्या, तीन नहीं तो कम से कम सुबह शाम की संध्या जरूर करनी चाहिए नियम से, वो पवित्र हो जाता है, जैसे आप रसोई का बर्तन है तो रोजाना मान लो तब ठीक होगा, फिर रसोई बना फिर खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा फिर साफ मान कर तैयार करो, तो रोजाना जैसे बर्तन तैयार किया जाए ऐसे जो रात दिन में कई तरह के दोष आते हैं सुबह शाम संध्या करने से वो अंतर्गत निर्मल हो जाता है, इस बात से दोनों वक्त संध्या करना भगवत नाम देवता गायत्री का जप करना ये जरूर करना चाहिए द्विजातियों को ब्राह्मण सत्य बेचने के लिए, आज दूसरा काम हो गया ब्राह्मण तो पवन नहीं करते हैं ढेर समार दो हजार देव लेते हैं, ये कलयुग की महिमा,
4 बजे से पहले स्नान नहीं करना चाहिए कि गंगा जी में और
नहीं स्नान करो गंगा जी 4 बजे से पहले रात्रि में कहते हैं उस समय में जल छोटा छोटा रहता है उसमें ज्यादा रात्रि में नहीं करना चाहिए, सुबह 4 बजे के बाद करना चाहिए ऐसा विधान रहा,
और घर पर बुला को संतों को भोजन नहीं कराना चाहिए क्या, संत लोगों को घर पर बुला के भोजन नहीं कराना चाहिए,
मना नहीं करता हूँ, यहाँ पर जिन कमरों में वे रहते हैं उन कमरों में साधुओं को भोजन कराने से व्यवस्था बिगड़ती है, घर पर भोजन कराने में मना क्यों करूँगा, मैं तो आप साधु खाने वाला हूँ अपने आप की आड़ी क्यों दूंगा, मैं तो मना नहीं करता हूँ, पर साधुओं को साधु का नहीं खाना चाहिए नहीं देना चाहिए, साधुगान साधु के लिए निषेध है, और साधु का अन्न अगर ब्रह्म ज्ञानी जब पहुंच जाए तो अक्षय सुख होता है ऐसा भी आया है, परंतु साधु को नहीं, साधु को आ जाए घर में तो पितर भाग जाते ऐसी बात है, इस वास्ते घर पर भोजन कराओ, परंतु ये यहाँ कमरा भी आपकी हित बिगड़ेगी, इस वास्ते शेठ जी इसका मना करते थे, इसका अर्थ नहीं है घर पर भोजन न कराओ, 5 प्रकार की भिक्षा होती है, माधुकरी वृत्ति भी होती है, अचानक घर पर आ जाओ तो बैठा कर भोजन करा दो, निमंत्रण दे कर दे ये भी एक भिक्षा है, परंतु ये उच्च दर्जे की नहीं है, कोई आ गया घर पर तो उसको रोटी दे दी, ये बढ़िया उत्तम से उत्तम उत्तम माधुकरी वृत्ति, यहाँ लिखा है तरे मेरा मृत कुलादपि एकानंग नहीं भोगते बृहस्पति कुलादपि, मानो मुसलमानों के घर से मिलते हैं भिक्षा लेने से भिक्षा हुआ अन्न उत्सव है, नीचे नीचे पता दिया है न नीचे वो जमनाथ पर है, मुसलमानों के घरों से एक श्लोक आता है ऐसा है, चरेत माधु करीम वृत्तिम अपि मेष कुलादपि एकानंग नैव भोक्तव्यम बृहस्पति कुलादपि, माधु की वृत्ति तुम्हारा जी ने मुसलमान से ले सकते हो, परंतु एक एक घर का खाना अन्न खाना बृहस्पति का कुल हो इतना बड़ा तो उसके एक अन्न का एक घर का नहीं खाना चाहिए ऐसा आया है, तो माधु की वृत्ति कई घरों की जो अन्न होता है वो साधु के लिए पवित्र होता है, न तो ऐसे लाता था फिर शरीर बीमार हो गया फिर लोग पहुंचाने लग गए, अब पहुंचाने लगे तो कई लोगों का आते तो उनमें से कराने भिक्षा ले लेता हूँ, पर ये बढ़िया चीज नहीं है, बढ़िया घरों पर जावे अचानक असंकल्प बताया वहां अमुक घर में जाएंगे ऐसा नहीं, ऐसा जाने वाला और उनको पता नहीं आज हमारे भिक्षु आएंगे ऐसा पता भी न हो, और वो भी भोजन भोजन कर रहे धुआं मिट जावे, रसोई बंद हो जावे, सब घर वाले भुगत हो जावे, उनके घर के बर्तन मांझ करके उल्टे कर दिए जाए, ऐसे ऐसे समय भिक्षा ले जाना चाहिए। पवित्र वो चीज है। अब हम कह तो देते हैं भाई, पर उपदेश कुशल बहुत से रहे जे आचरी तो घर में घर ले, हमारे सामने स्थान नहीं होता है, पर बात तो यही है सच्ची। मालूम की बस्ती सबसे बढ़िया है, जैसे भंवरा कई फूलों से अपन सुगंध लेता है, ऐसे घर घर से दास थोड़ी भिक्षा ले ले अपना निर्वाह करे तो पवित्र अन्न होता है। भिक्षा की रोटी में देखी, भिक्षा की रोटी भरते खा लो, अजीर्ण नहीं होता, विकार नहीं होता, शुद्ध होती है। मेरा अपने का मैंने कहा था ना, भिक्षा का अन्न होता है दही ले लिया तो हमारे कब से हो गया, और बगने मंद होगी मालपुआ जिसमें गिरी और दाका देकर के मोटा मोटा बनाया मालपुआ, और सज्जन वो प्रेमी था, रविवार भक्त मिलता है और भक्त मिलेगा, इस वास्ते गिरने में बना ला कर दिया मेरे को, अग्नि ठीक थी तो उसको मैंने दे दिया। फिर जिस घर जाना था वहां जा करके एक फुलका लिया, कहा सुनो भाई पानी सुनो और आलू का साग काटा काटा, सब अग्निमंद करने वाले ठीक हो गया। देने वाला का भाव अच्छा होने से वो अन्न बहुत पवित्र होता है। खिलाने वाले को आनंद ज्यादा आना चाहिए खाने वाले की अपेक्षा, वो अन्न बहुत पवित्र होता है, और खिलाने वाले को भी आनंद आता है, खाने वाले को तो मध्यम दर्द देगा, और खिलाने वाले को आफत हो जाए, खाने वाले को सुख होता है, सबसे नीचा बोल दो, ऐसा बोल नहीं करना चाहिए। जैसे सिंह है अगर हरण को मार खावे तो सिंह को बेचारा हरण को तरप रहा है, करे क्या सिंह खा जाए, इस तरह से तर्प रहे, ऐसे दुख पाने वाले को भिक्षा लेनी नहीं चाहिए। साधु सिंह एक मतो तरभती को खाए, भावहीन मृत्यु दशा थागे जिनकी भाव भक्ति है मैं दूंगा जैसे, ऐसा मेरे घर का अन्न है तो बड़ा पवित्र होता है, और आ गया आफत आ गई देव में डरा पड़ेगा तो वो अन्न बहुत अपवित्र होता है।
बुद्ध भगवान को विष्णु का अवतार किस कारण से माना गया
है?
बुद्ध भगवान को विष्णु जी का अवतार कैसे माना गया?
वो माना गया 24 अवतारों में आता है, वो इस वास्ते में माना गया यज्ञों के नाम से हिंसा बहुत ही होने लगी। वेद का नाम ले ले, उसमें जो शास्त्रों वेदों में लिखा है, तो उस हिंसा को हटाने के लिए बुद्ध अवतार हुआ, मगर बुद्ध अवतार से नास्तिक वेदों को न मानना सिद्ध हो गया, तो शंकर अवतार लेकर के भगवान ने वेदों को सिद्ध किया।
क्या ईसा मसीह को और मोहम्मद को भगवान का अवतार मानते हैं?
ना हम नहीं मानते, भगवान का दोस्त मानते हैं, भगवान का खड़ा का बंदा पुत्र मानते हैं, वही मानते हैं सही, वो भी भगवान का अवतार नहीं मानते, मुसलमान भी वो खुदा का बंदा मानते हैं। शरणानंद जी थे, चार थे हमारे एक मिला ईसाई, वो कहते ईसा को जानते हैं, हम जानते हैं ईसा तो हमारा भतीजा लगता है, हम भगवान के दोस्त हैं, वो भगवान का पुत्र है, हमारा सगे भतीजा है, उसको हम जानते हैं सगे भतीजा हमारा लगता है, तो हम खुदा को जानते हैं, खुदा है तो ये मोहम्मद है जो खुदा के पुत्र है, पैगम्बर है, ये स्वयं भगवान नहीं है, वो भी मुसलमान भी नहीं मानते।
आजकल बच्चों की अंग्रेजी शिक्षा बिगड़ी हुई है, तो संत लोगों को कोई पुस्तक ऐसी रखनी चाहिए जो सरकार से मांग करनी चाहिए जिससे उनका जीवन सुधरे।
अब भाई कीटा प्रेस में वर्णमाला की पुस्तकें छपती थी, आजकल कहीं छपती याद नहीं हमें छपती है, छोटी छोटी पुस्तकें बहुत ऐसी छपती है, वर्णमाला ज्ञान होते हैं बड़ी सस्ती निकली है और जानी चाहिए, और ऐसी पुस्तकों का लेखन हुआ नहीं कोई बढ़िया, और वो वहां पर घूस दे करके पुस्तक सिद्ध कर देते हैं कि लिख करके वो पुस्तक हो जाता है। आजकल बहुत ही भ्रष्टाचार हो रहा है, पतन हो रहा है, लड़कों का लड़कियों का मान पतन हो रहा है, ये पान आदि बड़े बड़ी खराब खराब चीजें सेवन करते हैं, बहुत खराब खराब चीजें खाते हैं, मसाला लगाते हैं, कोई कोई रंग लगाते हैं, रंग होठों का नखों का रंग लगाते हैं, बड़ा खराब खराब, जिसमें सरीस होता है, ऊंट का कच्चा चमड़ा उसको उतार करते हैं, वो उसमें लगा करते हैं, उसे रसोई बनावे और वो साधुओं को देवे, बहुत ही भ्रष्ट चीज है। इस वास्ते श्रृंगार की चीजें, शौकीना की चीजें, जिससे आयस आराम की चीजें, ये पसंद करने वाली चीजें है। अपने सादगी से शुद्ध चीज शुद्ध खाओ, शुद्ध पहनो, कपड़ा भी बिना सर्दी का शुद्ध पहनो, भोजन भी शुद्ध करो। आज सब जगह नकली नकली आ गए, भोजन नकली, अदरक नकली, हम देखा अदरक नकली और सब नकली, ब्राह्मण नकली, क्षत्रिय नकली, वेश भी नकली, शुद्ध भी नकली, नकली नकली हो गया। असली चीज मिलनी मुश्किल होगी। घी दूध भी नकली, पाउडर का बनाया दूध और तेल का बनाया हुआ घी, जिसमें मछली के समय डाल दे तो घी पर हो जाए, ये अनिवार्य है राज्य की तरफ से, अगर न डाले तो गुना होगा। तो मछली टक्चर में डालने से नहीं मालूम तो गुना है, क्या कर दे, तिरमाना कर दे। अपवित्रता बस कलयुग में खूब आई है, इस वास्ते पवित्र हो यहाँ करो।
मेरी शंका है कि नारद मुनि ने मायाप्री में दो शिवगणों को श्राप दे दिया, राक्षस बना दिया, तो राक्षस ने देवताओं को दुखी दिया, उन्होंने क्या हित क्या किया? तो
उसका उसने कल्याण कर दिया, उसका भगवान के हाथ से मरे मारे कल्याण किया, क्या बात होती है। अंत में राम नाम आ जाए तो कल्याण हो जाए, साथ साथ भगवान ने अवतार लेकर मारा है। साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मधकृतात्म नाम दस नाम नो में बंधा पुनसोक्षण सबसे यथा। जैसे आंख वालों के लिए सूर्य के द्वारा प्रकाश मिलता है, ऐसे संत महात्माओं के द्वारा, सागर तारक ब्राह्मणों के द्वारा, संतों के द्वारा दुनिया का अहित नहीं होता है। क्रोध हो भी देवस्य वरेण चलिए, देव का क्रोध है भगवान का, वो वरदान के समान है। ऐसे नल जी का साप हुआ, नलकूल मरने के लिए वो जिससे भगवान साक्षात दर्शन दिए, और रावण कुंभकर्ण आदि जिससे भगवान के हाथ से मरे, अंत में बात होती है। इस वास्ते वो साप देना करना उचित नहीं है, पर संत है सुधार के लिए दे दे। ये नीचे से नीच दर्जा है, ऊंचा दर्जा संतों का है कि अपने नियम में अपने में ठीक तरह से रहे, किसी से कुछ ना कहे, एक नंबर। दो नंबर की बात कहे तो भी ऐसा संतों ने किया है, ऐसा सज्जनों ने किया है, ऐसा गृहस्थों ने किया है, ऐसी बात सुना दे। दो नंबर, तीन नंबर में आवे तो भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए, सब ऐसा करना चाहिए, सबको ऐसा करना चाहिए, ये तीन नंबर है। और पहले चार नंबर में तुमको ऐसा करना चाहिए, नीचा ही नीचा है, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ये संत का दर्जा नीचा हो गया। इनसे नीचा है फिर मानते नहीं तो साप देंगे, कहा उनको वरदान देंगे। इनसे कहते सबसे नीचा काम संतों का साप वरदान देना है, इस श्रेणी में मुख्य यही है कि अपना आचरण करे, किसी कुछ नहीं, अपना ठीक करे, उनसे शिक्षा ले लो, ले लो ना ले लो ना।
विक्रमा जी, आपके प्रवचन से आध्यात्मिक उन्नति कर सकता भारतवर्ष, लेकिन शक्तिशाली और धनवान तो बन नहीं सकता,
बनेगा
तो दूसरे देशों के मुकाबले भारत को विकसित करने का आप नहीं
करेंगे? बिल्कुल नहीं है। ऐसे अध्यात्म तत्व बढ़ेगा तो धन संपत्ति वैभव धर्म ये जरूर बढ़ेंगे, संदेह नहीं है इसमें। धन लाखों करोड़ों रुपया हो जाए तो दरिद्रता नहीं मिटती, और सत्संग से कुछ भी नहीं हो दरिद्रता रहती नहीं पास, एक सिद्धांत पक्की बात है। वे समझते नहीं, वो समझते राम राम करने से भजन धर्म क्या होता है। चौदहवें चातुर्मास किया तो कई आदि मिलकर गाए, मैंने राम नाम का बैंक खोला, जो हरे राम साढ़े तीन करोड़ माला जपना है। तो आकर कह दो तुम नाम जप करके दुनिया को भ्रष्ट करते हो, पथ भ्रष्ट करते हो, निकम्मे बनाते हो, निछले बनाते हो, तो तुम्हारी खबर नहीं जाएगी। वो ठीक बात है, पीछे खबर सुननी नहीं बेचारा ने क्षमाई थी, मैंने धमकाया मेरे बहुत ऐसा, और हम तो करेंगे भाई नाम जप। तो ये समझते नहीं, वे समझ अध्यात्म बात से दरिद्र होता है, कभी नहीं होता दरिद्र, दरिद्री हो ही नहीं सकता। और दुख रुपया राखवान करोड़ों अरबों पास में हो, महल दरिद्री हो गए भाई कोरबा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण सीमांत को यश समस्त दोषा संतोष होगा। और धन संपत्ति आने वाली आएगी, आध्यात्मिक से धन संग नहीं आएगा, ये बात है ही नहीं। सुखम ऐन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरक योगा, इंद्रियों से होने वाला स्वर्ग में सब जगह सुख होता है, नर्क में भी सुख होता है। कैसे प्राणी नाम तद्या दुखम, दुख के लिए कोई चाहना नहीं करता, कोई प्रयत्न नहीं करता, कोई ग्रह नहीं दिखाता कि हमारे घर में ताव नहीं आया, हमारे आज किसको बुखार आएगा, हमारे घर में 5-7 वर्षों में मरा नहीं कोई आदमी, कब मरेगा, हमारे घाटा कब लगेगा, ऐसे किसी का प्रश्न नहीं होता। ना दूसरी से देखते तो भी घाटा लगता है, ऐसे घाटा लगता है वैसे जग मार के भी मुनाफा को आना पड़ेगा। क्यों विस्मदीजियम नहीं तत्परेशान, हमारे भाग की बात कौन रोक सकता है, तो ये समृद्धिशाली जरूर बनेगा। और समृद्धिशाली जो धर्म नहीं है केवल पैसा है, ये पैसा तो राक्षसों के पास मिला, राक्षसों के असुरों के पास में धन मिला है, धर्मात्म राजाओं के पास नहीं मिला है, इतिहास होगा महाभारत में। तो ये धन मिलता है वो तो नीच आदमियों के पास रहता है, ये ऊंचे दर्जे की चीज नहीं है। आप कहते तो समृद्धिशाली विदेश है, उनमें सदाचार कितना है, और वो आत्मघात करके फिक्र में आदमी मरते हैं। आपका सब देश अपने आत्मघात फिक्र में आदमी मरते हैं, आपका सब देश अपने आत्मघात में कितना मरते हैं, जो औसत मिले वो आपको पता लग जाएगा। इतने दुखी है जो आत्मघात करते हैं, पैसा ज्यादा है तो पैसा सुखी नहीं होगा, संतोष आत्म ब्रह्म संतोष सुखी होते हैं। संतोष तुल्य मिलान, तो आध्यात्मिक लाभ होने से सब तरह का लाभ होता है, शारीरिक लाभ होता है, दैहिक भौतिक लाभ होता है, शरीर निरोग होता है, मन शुद्ध होता है, जिससे इतना लाभ होता है जिसका वर्णन नहीं कर सकते।
गोपी का गीत का समझाने के बाद, गोपी का गीत के भाव की समझाने के बाद,
गोपी का क्या बताऊं भाई, वो गायत्री ते दगम गणना ब्रज शरत चंदिरा सद प्री, श्लोक है। अब वो आप पढ़ो भागवत में पढ़ो, 50वां अध्याय है, उनमें ये 3रा अध्याय आता है,
31वां अध्याय
का 31वां भागवत का राष्ट्रपंचाध्याय 5 अध्याय 3रा अध्याय होता है। उसका पाठ करो, भागवत की टीका मिलती है, प्रश्न मिलती है। और बोलो, आज एक बहुत बड़ा काला दिन है कि जानकार की बात नहीं मानेंगे, अनजान की बात मानेंगे, वैद्य के कहने से दवाई नहीं लेंगे, कुछ वैद्य नहीं जानता हाँ ये दवाई ले लो वो ले लेंगे, मंदिर में प्रवेश करें तो समारोह को और इन लोगों को पूछेंगे, ब्राह्मण को नहीं पूछेंगे, कोई काम करो जानकार को नहीं पूछे, अनजान को। मजदूर लगाओ तो मजदूरों के हरिजनों को लगाओ, जो काम जानते नहीं सीखना चाहते नहीं उनको लगाओ, पद में न है तो हरिजनों को पद दो, हरिजनों को आता नहीं पद, कुछ करना काम आता नहीं, राज्य की सब श्रृंखला बिगड़ रही है, दुनिया की सब श्रृंखला बिगड़ रही है। अपूज्यायते पूज्यन्ति, पूज्यानां च प्रतिक्रमा, तीन चतुर भविष्यन्ति, अकाल मरणम भयम्। जहाँ योग्य है, सज्जन है, श्रेष्ठ है, उनका तो आदर होता नहीं, और दुष्टों का आदर होता है। महान मांस मदिरा आदि सेवन करने वाले हैं, दुर्दर्शनी है, उनका आदर होता है, उनको पद मिलता है, उनको अच्छा बोध मिलता है, ऐसे दुनिया का महान नुकसान होता है, महान पतन होता है। और जो कलयुग की महिमा है, ऊंचा चरण चला दुनिया में सबकी मति बोल आई है, जिन कलयुग महाराज आपने लीला अजो दिखाई है। इस वास्ते बचो, ये बड़ा भयंकर जमाना है। जैसे जाड़ा ज्यादा आता है तो कपड़ा ठीक रखो, ठीक कपड़ा रखते रखते हवा लग जाती है, ऐसे अच्छे अच्छे वैष्णव ब्राह्मण ऐसे लगती लाज लग गई है, तो किसी छोरी को लेकर कोई अच्छा अच्छा आदमी धनी गण जा कर देता है, बने शंकर पैदा हो रहे हैं, इसमें छोरों की रुचि हो रही है, उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं, माँ बाप की मानते नहीं, और ब्याह करने पर छोरी को दुख देते हैं, तलाक देते हैं, महान 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 पाप है। लड़की को छोरे आजकल के पहले जो रूप देख करके सुंदर आकर्षित हो जाते हैं, फिर ब्याह करते हैं, फिर उनको दुख देते हैं, बहुत अत्याचार कर रहे हैं। इस बात के भाइयों बहनों, अपने अत्याचार से पापों से बचो, अभी समय है। लोग कहते हैं कि समय के अनुसार चलो, समय आज धर्म का नहीं है, उसके अनुसार चलो, तो समय के अनुसार चलो तो गर्मी के दिनों में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, गर्मी के दिन है बड़ा खाना चाहिए तेल में बढ़िया और गर्म पानी पीना चाहिए और बैठना चाहिए पर लू लगे जोर से वहां पर जो समय के अनुसार है। समय के अनुसार चलो तो चल जाओगे, जीना मुश्किल है, मर जाओगे। समय से रक्षा करो, ऐसा समय गर्मी का आवे तो गर्मी से रक्षा करो, ऐसे ही महान पाप का समय आवे तो पापों से बचो। अभी बचने की बड़ी भारी आवश्यकता है। मैं अब क्या कहूंगा, जो थोड़ा संकोच भी होता है उन आदमियों का पाप से बचना सुगमतापूर्ण हो जाता है, सरलतापूर्ण हो जाता है। सत्संग बड़ी भारी रक्षा होती है। आज के जमाने में ऐसी हवा चल रही है पतन की, ऐसी पतन की अवस्था में भी सत्संग करते हैं तो उनमें सदगुण सदाचार आदि आते हैं। सत्संग से शस्त्रास्त्रों से बहुत लाभ होता है। अच्छी जो पुस्तकें हैं, सरल पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों जो आध्यात्मिक तत्व को जगाने वाली बढ़िया बढ़िया मार्ग में बात पहुंचाने वाली जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों से बहुत लाभ होता है। मैंने तो पुस्तकों से लाभ लिया है और अभी लेता हूँ, अभी पढ़ता हूँ। मेरे साथी रामधारा रामाधारा आदि कहते हैं, समझे आप पुस्तकें क्या पढ़ते हो? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अपने कल्याण के लिए पढ़ता हूँ, मैं सीखता हूँ। मेरे को पुस्तकों से बातें मिलती है, मिली है, आप लोगों से मिली है, मेरे को शिक्षा मिलती है जगह जगह। उस शिक्षा से मुझे बहुत फायदा हुआ है और होता है, तो पुस्तकों से बहुत लाभ है। ये दान करते हैं, पुण्य करते हैं, इस जगह अगर पुस्तकों खरीद करके, जो बढ़िया बढ़िया कल्याण करने वाली पुस्तकें हैं उसको खरीद करके और सस्ते दाम दी जाए, उनमें जो पैसा लगा जाए सस्ते में, वो दान पुण्य से हजारों गुना दीजिए। समझे, ध्यान दिया? मानो जो पुस्तक है आध्यात्मिक है, धार्मिक है, जनता के हृदय पर असर करती है, आचरण सुधरता है, ऐसी पुस्तकें खरीद करके उसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से कमीशन देकर के बिक्री की जाए, उसमें घाटा 100-200 का 300 घाटा दिया जाए, वो बड़े भारी दान से बढ़ा है। दान पुण्य कर दो उतना इतना फल नहीं है जितना इसका फल है, इतना मान तो शस्त्रास्त्रों से बहुत लाभ हुआ है। मेरे कुछ हुआ है और होता है, मैं जानता हूं इस बात। पढ़ाई मैंने की है, पढ़ाई की, उस पढ़ाई से भी लाभ हुआ है, परंतु पारमार्थिक पुस्तकों से लाभ बहुत विशेष हुआ है। उनमें ऐसी ऐसी विलक्षण बातें होती है जो शास्त्रों में उसमें आपको मिलते ही नहीं, शास्त्रों में लिखी हुई जल्दी जानी नहीं जाती। प्रत्येक कृपा फलोन्नति भागवत के बातों में आया है कि आम के जड़ों से लेकर टहनिया तक और फल फूल तक सब तक वो रस पहुंचता है, परंतु फल मिलता है उनकी विलक्षण होती है। आम का रस है वो, आम के फल में रस है वो, जड़ों से लेकर पेड़ तक सब में वो रस है, परंतु वो भी फल रूप से होता है। निगमत कल्पतर और गलितम फलम सुख मुखादमसुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावक। तो ये निगम का सात वेद है, ये तरु है, उनका फल है भागवत। तो तरु में रस वो दृश्यमय होता है पर अलग अलग पता लगता है, न जल समुद्र का ही होता है पर बदलों के जाता है, अमृत के समान हो जाता है। अगर वो आवे तो मरा समुद्र आ जाए, डूब जाए, प्रलय हो जाए, खाओ तो पियो तो जल हो जाए, महान खारा पी नहीं सकते। वही बदलों के द्वारा आता ठीक होता, तो संत महात्माओं के द्वारा शस्त्रास्त्र जो आते हैं उनमें बड़ा सार आता है, बड़े लाभ की बात आती है। तो हम सब क्या करें, उनको ना मानते हैं, ना मानना चाहते हैं, ना जानते हैं, ना जानना चाहते हैं, क्या करें, बड़ी मुश्किल हो रही है हमारे, वो नहीं मानेंगे। जिससे जल्दी कल्याण हो जाए ऐसी बात नहीं मानेंगे, पतन जल्दी हो पट मान लेंगे, खाने पीने में कद्दू का बड़ा भारी प्रभाव आ रहा है। इस वास्ते भाई सावचेत रहो, धनु के लिए सावचेत रहो, अपने बालकों को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। आप निर्मल बनोगे तो बालक निर्मल बनेंगे, ये एक बात है। विश्व मार्मिक जितने अच्छे अच्छे संत हुए, अच्छे महात्मा हुए हैं, उनकी माताएं अच्छी हुई है। कहीं कहीं भी नहीं भी हो तो प्राय आप देखोगे तो मैंने ये ख्याल किया है, माताएं जहां अच्छी होती है उनके बालक बड़े संत होते, अच्छे होते हैं। कायदा है, माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा होता ही है। एक बात आती है, लोगों ने विचार किया कि नंद बाबा है, यशोदा मैया, ये तो सब ये कन्हैया कहाँ कहाँ से आ गया, और इनका स्वभाव ऐसा हो गया कि जल्दी पिघलते ही नहीं, तो क्या हुआ? कहते कुछ नहीं है, बचपन में पूत न का दूध पी लिया, थल पी लिया, इस बार स्वभाव बिगड़ गया। तो अच्छे पूत से अच्छे दूध कैसे होते हैं? भगवान कृष्ण का दोष दिख है, दिखता है। काले का अर्थ हद है, जहां दृष्टि नहीं पहुंचती वो काला दिखता है, तो इनके तय तक दृष्टि पहुंचने इस बार श्याम सुंदर है।
सुबह 5 बजे प्रार्थना में आने में कुछ देरी हो जाती है, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम बहुत दुखी होकर वापस लौटते हैं।
होना चाहिए, हम तो यही चाहते हैं, ये ढिलाई कर दो तो ढीला तो आप ये करते हो, दुनिया के लिए ढीला बना ब्रांड बना बना, ये हमें पसंद नहीं है। आप सावधान रहो, क्यों देरी करते हो? काम करो ही करो, फिर अधूरा क्यों करो? ठीक ढंग से करो, संध्या करो तो उत्तम करो, निकल करो ही क्यों? इस वास्ते 5 बजे देरी हो जाती, इस वास्ते 5:30 कर दो, 5:30 कर दो, फिर देरी हो जाती 6 बजे कर दो, फिर 7 बजे कर दो, कुछ नहीं होगा।
पीछे बैठ के सुनने की आज्ञा दे दीजिए,
अब कैसे दे दें? पहले 5 बजे आयो,
5 दिन हो गया। भगवान के दर्शन किस उपाय से मिल सकते हैं इस युग में? इस युग में भगवान के दर्शन किन उपाय से मिल सकते हैं?
प्रेम से, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो, भगवान बिना रहा न जाए, एकदम आदर्श हो जाए, हे नाथ हे नाथ, चलन लग जाए, बिना भगवान के दर्शनों के प्राण भी लग नहीं जाए, पड़ता है भगवान। आप चाहते हो सुगमता पूर्वक शांति ऐसे भगवान मिले, ऐसे मिलते। अगर धर्मात्मा होते जो सुख मिलता, आराम मिलता, रुपये ज्यादा मिलते, तो धर्मात्मा लोग बहुत हो जाते, पर आराम नहीं मिलता। धर्मात्मा को भीतर की शांति मिलती है और लोगों से बाहर की संपत्ति मिलती है। लोग बाहर की संपत्ति को देखते हैं, बड़े समृद्धशाली देश है, बड़े अच्छे अच्छे हैं, क्या उनकी दशा हो रही है, किस तरह जा रहे हैं, ये परिवार नियोजन की बात से देश नष्ट हो गए हैं, महान पतन हो गया है। मेरे पास एक पुस्तक है कल, इस्लाम धर्म और बर्थ कंट्रोल, इस्लाम और बर्थ कंट्रोल, पुस्तक बहुत बढ़िया लिखी है। जहां जहां ये हुआ है उनका नाश हो गया है, अनुभव रोते हैं अब, और एक बार संख्या बढ़ा तो सकते नहीं, नाश तो कर सकते हैं, गर्भ गिरा सकते हैं, गर्भ नहीं रहने देंगे ये तो करेंगे, उनका काम तो जल्दी करेंगे, छोटा काम करने में मुश्किल हो जाएगी, वो जनता कम हो जाएगी, फौज कम हो जाएगी, एक ही बेटा है वो फौज में जाएगा तो घर का काम कौन करेगा, घर का काम तो फौज में कौन जाएगा, तो ये फौज नष्ट हो जाएगी, देश की रक्षा करने वाली, एक दो संतान हुए तो मरेंगे, सभी बुरी मौत से मरेंगे। और कहते हैं कि अन्न कहाँ से लाएंगे, वृक्ष जहाँ ज्यादा होते हैं वहाँ वर्षा होती है, अब अन्न मनुष्य ज्यादा होगा अन्न नहीं पैदा होगा, आज अन्न पैदा क्यों नहीं होता है कि अंडे खाओ, मछली खाओ, जानवर को मार कर खा जाओ, मांस खाओ, तो जानवरों के लिए तो घास की जरूरत नहीं, मनुष्य के लिए अन्न की जरूरत नहीं, इस बार वर्षा कम होती है, अकाल पड़ता है, जरूरत ही नहीं, अपने खा जाओ, पशुओं खा जो घास की जरूरत नहीं, आप खा जो आपको अन्न की जरूरत नहीं, क्यों वर्षा करो, क्यों वर्षा की जरूरत है? ताप जो बढ़ेगा वो काली बार ही बार दुकाल पड़े, बिजू अन्न दुखी बहु लोग मरे, बार बार कल पड़ेगा, बिना अन्न के लोग मरेंगे। कहते ये खेती में जानवरों को मारो, जब नहीं मारते थे उस समय में जितना अन्न पैदा होता था उतना अन्न पैदा नहीं होता, 56 का समय जो बड़ा भारी काल है, बड़ा भाई का तुयो 2500 3400 अंतर 4800 आकुलियो पीढ़ी पर पीढ़ी पोतो जी पाया अगले काल और दादो जी आया। जिसमें लोग भूखा मरते मर गए कहते 12 शेर की कणक मिलती चले मिलती छप्पन के साथ। आज कितने उद्योग कर दिया, खेचा कर दिया, खेतों में जानवर मार दिया, क्या भाव अन्न मिलता है बताओ? पिता के दूसरा ज्यादा होता है, बैम बड़ा है। पाप का फल कभी सच्चा अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। परंतु बुद्धि बिगड़ गई, भ्रष्ट हो गई, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी ये इष्टदेव हो गया। भगवान इष्टदेव नहीं, धन कैसे पैदा हो? हे झूठ कपट, हे काला बाजार, तू निहाल कर दी हमारे को पैसा दे दी, हे इनकम टैक्स की चोरी, हे सेल्स टैक्स की चोरी, देवता तुम कृपा करो हमारे धन मिल जाए। देवता जहाँ देव पूजा होगी जैसे आपने पनपेगा फल, पर आज भरोसा झूठ कपट बेईमानी सगे बाजार का जितना है उतना सत्य पर नहीं है, धर्म पर नहीं है, ईश्वर पर नहीं है, अपने प्राण पर नहीं है, और दो हाथों पर भी नहीं है, कमार खा लेंगे क्या है, वो भी नहीं है बड़ा, केवल झूठ कपट बेईमानी का बड़ा है। दो हाथों से एक पेट बात क्या है, फिर पाप क्यों करें? खाने के लिए नहीं करते हैं, धन हमारे सुनते हम लखपति और करोड़पति हमें नाम हो जाए, इसके लिए धन इकट्ठा करते हैं, बहुत पतन होता है इसे। पाप के तो ख्याल ही नहीं है कि अन्याय क्यों करते हैं, पाप क्यों करते हैं, कितना लोगों का नाश होगा, ये तो होश ही नहीं है, विचार ही नहीं है। कलयुग में बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अभी अगर भजन किया जाए धर्मात्मा बने तो बहुत विशेष लाभ है, क्योंकि अभी पापात्मा जागी है तो धर्मात्मा की कदर है। आज झूठ बोलने वाले बहुत हो गए, तो सच बोलने वाले एक दो उनकी बड़ी कदर है। भगवान के दरबार में भजन करने वालों का बड़ा भारी आदर है। कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा सुन सुन हो जरूर पारा कलो केशव की नाथ कलो तरी की नाथ। तो कलयुग में महिमा हो चौ दुग सौ श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आवन पाओ। कल में भजन का विशेष प्रभाव है। भाइयों बहनों क्या करें, हम कह देते हैं आप सुन लेते हैं। शास्त्रों में लिखा है कहने और सुना यही व्यसन है। जैसे चिलम पिए, तमकू पिए, भांग खावे, तमकू सोवे, ये व्यसन होते हैं। चाय है, कुकर है, ऐसे सुनने का कहने का व्यसन है, और ये व्यसन अच्छा है, बुरा व्यसन नहीं है। हम तो जब तक वैसे जीवन नहीं बना तब क्या किया, अपना जीवन बनना चाहिए। अपने वास्तव में वैसे ही आदत, अपने स्वभाव वैसे ही शास्त्रों के अनुसार बनना चाहिए तो कल्याण हो जाएगा, मन में बड़ी शांति मिलेगी, भगवान में प्रेम होगा, उसका बड़ा फायदा होगा। आप लोगों की अगर आप सत्संग सुनने वाले हो, हम जो कभी कभी सोचते हैं तो आपके दर्शन हो जाए हमारा वो भाग्य है। आजकल के जमाने में सत्संग की रुचि होने वाले आदमियों को कोई देखना चाहे गांव गांव में जाकर मिलना मुश्किल है। यहाँ पर आए हैं वो अच्छे अच्छे भाव को लेकर, जो सत्संग के उद्देश्य आए हैं वे अच्छे अच्छे आदमी आए हैं। बहुत से अच्छे आदमी आपके गांव में रह गए हैं, उनको आने का मौका नहीं मिला है, पर आए हैं वो अच्छे अच्छे चुनवे चुनवे एक जगह आपको दर्शन हो जाए, कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। परमात्मा को दर्शन होने मुश्किल है। लोग उठते हैं तो हे भगवान कोई धर्मात्मा से हम तो बैठो दे, और कुमांश उपास से टाली है महाराज तो कुमांश से आज अच्छे आदमी बहुत कम मिलते हैं। तो अच्छे आदमियों को इतना समुदाय मिल गया, हमारे को दर्शन हो गया, हमारा अहो भाग्य है कि जिससे पारमार्थिक रुचि वालों का दर्शन हो गया। थोड़ी भी रुचि वगैरह वाले उनका परमात्मा के दरबार में बड़ा आदर है। पापी धनवान भी हो जाए, लक्ष्मीवान हो जाए, राजा महाराजा बन जाए, उस भगवान के दरबार में आदर नहीं है। शुद्धि का आदर है, अशुद्धि का आदर नहीं है। पवित्र का आदर है, अपवित्र का आदर नहीं है। तो आप पवित्र लाओ, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, इसमें रहो। विषय सब ठीक हो जाए। बोलो क्या कहें, बताओ। धर्मात्म बनो, भगवान नाम लो, चलते फिरते उठते हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान को पुकारो थोड़ी थोड़ी देर में, हे भगवान आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, आपके चरणों का प्रेम हो जाए। प्रेम दर्शनों से बढ़कर है, दर्शन मांगना इतना बाकी नहीं है जितना प्रेम मांगना चाहिए। दर्शन होने पर प्रेम हो जाए नियम नहीं है, प्रेम हो जाए वहां भगवान आ जाए नियम है। इस वजह से प्रेम का महात्म ज्यादा भगवान सूर्य स्वयं दर्शनों से, इस वजह से प्रेम मांगो भगवान प्रेम हो जाए आग्रह हो जाए भगवान बिना रहा न जाए। प्रार्थना करो महाराज ऐसा प्रेम दो, ऐसी आग लगाओ, ऐसी जलन पैदा कर दो जो आपके बिना रहा न जाए, आपके बिना बेचैनी हो जाए, चैन न पड़े देखे बिना। जैसे मेरा मैंने कहा हरे देखे बिना रहो ले न जाए लग गया प्रेम बिहारी सो। सुना भाई सुना दे, ऐसी लगन लगे ऐसी लाए लग जाए आग लग जाए बिना भगवान के बिना रहा न जाए, किस तरह से कैसे देखो ऐसे देखा लगन लग जाए निहाल हो जाओ। आप निहाल नहीं हो जाए दुनिया निहाल हो जाए। मीरा भाई कब हुआ, आज तक उनके पदों से दुनिया को शांति मिलती है, मार्ग मिलता है, उनकी व्याकुलता मिटती है, शांति आती है। कैसे आप बढ़ो तो आपके दर्शनों से, आपके स्वर से, आपके भाषण से, आपके चिंतन से, याद करने मात्र से दुनिया पवित्र हो जाए। बहुत बिना भागवता महाराज ऋषि कहते हैं बीरू जी को, आपके जैसे भक्त हैं वो तीर्थ स्वयं बने, तीर्थ ही कूर्वंती तीर्थाने शांत से कदा भरता, आपके हृदय में कदाधर भगवान विराजमान है तो आप तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं, तीर्थों को पवित्र करते हैं, आप तीर्थिया बताते हैं तो तीर्थ संपूर्ण दुनिया को पवित्र करते हैं, संत महात्मा तीर्थों को पवित्र करते हैं। ऐसी बातें मैंने सुनी है, आई है पुराणों में आई है, जगह जगह बातें आई है, इतिहास आता है सर। तो आप भगवान नाम से पवित्र बन जाओ तो दुनिया को पवित्र करने वाले हो जाओगे, आप तो पवित्र आपसे दुनिया पवित्र होगी, ऐसे बन जाओ शुद्ध निर्मल।